समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
मिट्टी की महिमा मिटने में मिट मिट हर बार सवरती है, मिट्टी मिट्टी पर मिटती है, मिट्टी मिट्टी को रचती है। श्री मंगल सिंह सुमन की ये पंक्तियां आज विश्व मृदा दिवस पर मिट्टी की अहमियत को बखूबी बताती हैं, जिस पर हम अपनी डेटलैंड सेगमेंट में आगे बात करेंगे। नमस्कार श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा।
नमस्कार करिश्मा, नमस्कार एंड अ गुड डे, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स टू आर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा विद शगुन चोपड़ा एंड करिश्मा राय टुडे। एंड एज करिश्मा टोल्ड अस, वेल यस, सॉयल इज वेयर लाइफ बिगिंस, वेयर आई थिंक दिस इज द अल्टीमेट प्लेस वेयर फूड बिगिंस। Right, we can put it like that. We will discuss about it in our Dateline segment. And first, we are beginning with the headlines. We'll also give you reports and capsules. We have so many of them. And also our tributes, which will be there at the ending segment. Stay tuned for that because we have so many personalities, including from the world of sports and the musicians as well and actors. So you have to stay with us, listeners, for the next 30 minutes. Let's get started with the headlines first. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in New Delhi. Several agreements exchanged in the fields of defense, trade, economy, healthcare, academics, culture and media.
प्रधानमंत्री ने कहा रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत शांति के पक्ष में।
Government says no penalty or action for 3 months for delayed registration of work properties on Ummeed portal.
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर 5.25% किया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को 7.3% किया।
So now is when we will discuss about soils because it is World Soil Day. This is our segment Dateline India.
और हर साल 5 दिसंबर यानी आज के दिन दुनिया विश्व मृदा दिवस मनाने के लिए एक साथ आती है। यह हम सभी के लिए एक अनुस्मारक है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, बल्कि जीवन का एक जीवित सांस लेने का आधार है।
ऑफ कोर्स करिश्मा, एंड आई थिंक दैट द सॉइल इज दैट क्वाइट हीरो, the part of our quiet family, of our daily routine, which shapes our life significantly, well, without we even knowing about it. It grows the grains in our chapati, also the vegetables that we put in our curry, even the cotton in the clothes we wear. We have a beautiful song for our listeners that gives a very soulful message of an intimate relationship shared between humans and soil.
हर कण मेरी काया का माटी ही माटी बोले, अखियां जो बंद करूं तो जानू मैं ही माटी हूं रे। अरे सुन ले मैं भी माटी हूं, तू भी माटी है, आ जा रे माटी का जश्न मनाए।
I think if soil could speak, soil will say that to us. Don't you think so?
सही कह रही हैं आप शगुन.
And Karishma, when I talk about World Soil Day, I can instantly smell in my imagination, of course, in my mind, that beautiful aroma of soil, that earthy smell. And after the first rain, the fragrance that brings instant calm. It has healing powers. Mm-hmm. I have read it somewhere, and I think it's true. And most interestingly, just like our favorite perfumes, that soil aroma has a beautiful name, and that is Petrichor. The aroma comes from microbes releasing a compound named geosmin.
और यतिन मृदा यानी कि मिट्टी के स्वास्थ्य, सतत भूमि उपयोग और जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और तेजी से बढ़ते शहरी विकास से मिट्टी की रक्षा की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है. और हाँ, मिट्टी जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक विविध है. वैज्ञानिकों ने 19,000 से ज्यादा प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है जो साफ रात में दिखाई देने वाले तारों से भी कहीं ज्यादा है.
Also, the idea of celebrating soil actually began way back in 2002 when the International Union of Soil Sciences proposed a dedicated global day. So a decade later, the FAO and the UN backed the initiative, officially recognizing December 5 in honor of King Bhumibol Adulyadej of Thailand, who was a global advocate of sustainable soil management.
श्रोताओं, विश्व मृदा दिवस का पहला आधिकारिक उत्सव 2014 में ठीक 10 साल पहले मनाया गया था. मिट्टी प्रकृति का अपना जल शोधक भी है. जैसे जैसे पानी धरती की परतों से रिसता है, मिट्टी अशुद्धियों को छान लेती है, जैसे हमारे घरों में लगा एक विशाल प्राकृतिक आरओ सिस्टम.
ओके, यस, ऑफ कोर्स. एंड हियर इज अ मेस्मराइजिंग ओडिया सॉन्ग फॉर आवर लिसनर्स दैट कैरीज अ हार्टफेल्ट मैसेज ऑन व्हाई सॉइल is our greatest nurturer.
खुशबू मुझको कहीं से आए, फूलों से ज्यादा जिसकी खुशबू मुझे लुभाए, तपते में माटी 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 सुना फड़े रूपा फड़े
Well, yes, for me, Mati is actually that distinctive scent which I told our listeners about, usually which is described as earthy, pleasant, sweet, produced by rainfall on very dry ground. This is, I'll spell it for our listeners, Petrichor. This is Petrichor. So if you smell that earthy smell, you can actually relate to this word. I think you can remember it.
हम खुद से कहते हैं मिट्टी की खुशबू
जी,
और बारिश के मौसम में ज्यादातर लोगों को वो खुशबू इतनी लुभाती है
yes.
कि उसका शायद कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता, कोई कंपैरिजन ही नहीं है.
Exactly. And India, with its farming heritage, has always understood the value of healthy soil. From traditional watershed practices to today's soil testing labs, organic farming missions and climate resilient agriculture programs, well, India continues to nurture this precious resource.
और इसी के साथ फिर केचुए हैं, भूमिगत के गुमनाम इंजीनियर. ये छोटे छोटे से मजदूर एक साल में प्रति एकड़ 10 टन मिट्टी को उलट पलट सकते हैं, जिससे खेत सांस ले पाते हैं और उपजाऊ बन पाते हैं. शगुन, क्या आप जानती हैं कि मिट्टी दुनिया के सभी जंगलों के कुल कार्बन से 3 गुना ज्यादा कार्बन जमा करती है, जिससे पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है.
Well, 3 times more. Okay, well, intriguing. And soil speaks their stories through its colors. Red soil shows it's rich in iron.
और वहीं काली मिट्टी अक्सर ज्वालामुखी स्रोतों से आती है और कपास के लिए एकदम उपयुक्त मानी जाती है.
So yes, we told you about red soil, rich in iron. White or grey soil hints at salt or silica deposits, and every layer of soil holds memories. Pollen grains, tiny fossils, chemical clues all help scientists read thousands of years of climate and human history. So soil is like bade buzurg ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ.
सही कहा आपने, इसे बहुत अच्छी तरीके से आपने परिभाषित किया. लेकिन मिट्टी को जीवित और उपजाऊ बनाए रखने के लिए हम न्यूनतम जुताई, फसल चक्र, जैविक पदार्थ मिलाना और आवरण फसलों का उपयोग जैसी परखी हुई प्रथाओं पर निर्भर करते हैं. ये सिर्फ खेती की तकनीकें ही नहीं है, ये उस धरती को कुछ वापस देने के तरीके हैं जो हमें भोजन देती है.
Yes, Karishma, and well, let me tell you why the world is giving so much attention to soil now, because more than 95% of the world's food comes from the soil, our very soil. Plants get 15 out of 18 essential nutrients directly from soil. So this is what how important soil is. So obviously if the soil is weak, our food will be not that nutrient, it will be nutrient deficient, and so our health will be. Soil health truly shapes our health, the health of whole human civilization. I think that's true. And Dr. M.L. Jatt, Secretary and Director General, Indian Council of Agricultural Research, ICAR, on the occasion said that it is everyone's responsibility to restore our soil.
In context of restoration of the soils, making them healthy, Government of India have taken several initiatives that over 2010, in 2005, we have reduced almost 40 million hectares of the water erosion areas. We have restored them. We also restored the desert soils to the tune of 4.8 lakh hectares. And there are other initiatives. For example, the natural farming mission of the Government of India is towards making our soils healthy and a sustainable and healthy food production system. And therefore, the soil health should be a community's movement. One person cannot restore the soils. So it's everybody's responsibility to work on restoration of the soils and making them healthy.
तो श्रोताओं, स्वस्थ मिट्टी रातों रात नहीं बनती है. सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऊपरी मिट्टी बनने में सैकड़ों हजारों साल लग सकते हैं, और फिर भी वही परत कटाव के जरिए मिनटों में गायब हो सकती है. यह इतनी नाजुक और कीमती है कि इसकी रक्षा करना हम सब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.
A collective responsibility.
माटी चुके, तन मन नाचे रे, आजा रे माटी का जश्न मनाए. मैं भी माटी हूँ, तू भी माटी.
एंड करिश्मा, एंड फॉर आवर लिसनर्स, डू यू ऑल नो दैट बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा?
बिल्कुल.
कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं.
But today's baat is anything but choti, Karishma. A special cinematic milestone has been unveiled right at the heart of Leicester Square. A bronze statue of Dilwale Dulhania Le Jayenge's iconic characters, Raj and Simran. This was officially unveiled as part of the scenes in the square trail. So the installation marks 30 years of DDLJ, Dilwale Dulhania Le Jayenge. And with this, Karishma, the film becomes the first Indian movie to be honored with a statue in the popular London landmark. So visitors to London, they can now stop by Leicester Square to view the statue, take photographs and then celebrate the timeless legacy of the beloved film.
और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
Yes, Karishma. Well, special intensive revision is progressing in Kerala. Several interesting instances are being reported from across the state, where officials, including booth level officers, are using the break to refresh and regain their energy through various engagement activities. We have more on this from our correspondent.
Even after long hours of fieldwork, many BLOs are finding creative ways to stay energized. During break time, many teams have tuned to Zumba and other fun fitness activities. Their enthusiasm has also inspired students who are actively volunteering and assisting BLOs. One of the unique attractions was the kite-making workshop, which received very good attention. BLOs and volunteers have been crafting vibrant kites that were used during the kite festival. Cultural flair is also very much alive on the sidelines. At several blocks, BLOs have been singing Malayalam songs during their breaks and creating joyful atmosphere. In a delightful moment of solidarity, even the chief electoral officer joined in one block. The spirit of teamwork rose to new heights in Edacheri village of Nadavaram block, where the BLOs, volunteers and staff members performed a spirited flash mob with songs and dance. A similar scene unfolded at Elavalli village in Manalur, where the community gathered around the lively performance during the break time actively into a festive celebration. Kerala's SAI work has evolved far beyond administrative routines. It has become a vibrant movement powered by energy, creativity, and community spirit, and bringing people together while strengthening the foundations of democratic participation. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
Okay, moving on. The researchers in Raman Research Institute in Bengaluru are developing Pratyush, a lunar orbiting radio telescope to study the signals emitted by stars. The project was funded by ISRO in 2018. Our correspondent informs that the project will help the scientists to know about our universe and its evolution. So let's find out more from our correspondent.
The man has been curious to know our past and the origin of our universe. One way to know about how ancient our universe is to study the signals emitted by the splitting stars reaching Earth after several years. Studying them from the ground is very difficult as they drown in other emerging signals emitted by our communication lines. Hence, Raman Research Institute has developed a payload that works as a radio telescope. This can be sent to the far side of moon, which is considered radio quiet. With no interference at other side of the moon, the radio telescope can study the signals emitted by splitting and dying stars. The associate professor in Raman Research Institute, Professor Mayuri Rao, has said that this will help the researchers to know the evolution of early universe, the interstellar medium and other nature of the radio signals in space.
The experiment Pratyush that we have proposed, we have submitted a proposal to ISRO for this experiment back in 2018. And this experiment in the laboratory model we have shown has the necessary sensitivity for detecting the signal we are trying to find from the first stars and galaxies. Path forward is that we are developing a small mini Pratyush payload ourselves that we can fly and try to get an initial sense of the interference around Earth for motivating an experiment in the far side of the moon.
Professor Mayuri informed that space-based radio astronomy is a new area of research needing cutting-edge technology. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने हिम कृषि योजना भी शुरू की है और यह योजना प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.
हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जलवायु और पहाड़ी भूगोल के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन इसी भूगोल ने यहाँ के कृषि को चुनौतीपूर्ण भी बनाया है. छोटे खेत, बिखरी जोतें, सिंचाई के सीमित संसाधन और मौसम की अनिश्चितता हमेशा किसानों के सामने बड़ी बाधाएं रही हैं. ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की हिम कृषि योजना प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा का संचार कर रही है. सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना किसानों को पारंपरिक खेती की सीमाओं से आगे ले जाकर उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों, उच्च क्षमता वाली फसलों और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों से जोड़ने का प्रयास है. ये न सिर्फ कृषि उत्पादकता बढ़ाने की पहल है बल्कि किसानों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने की दिशा में भी एक ठोस कदम है. हिमाचल प्रदेश की कृषि मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर रही है. असमान सिंचाई व्यवस्था और सीमित तकनीकी संसाधनों के कारण किसान अपनी भूमि की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते. इन्हीं उपाधियों को दूर करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई हिम कृषि योजना सार्थक सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत पहाड़ी खेतों के लिए उपयुक्त लघु कृषि यंत्रों से लेकर उन्नत मशीनरी तक किसानों को 30 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इससे खेती न केवल आसान हुई है बल्कि इसकी लागत भी काफी कम हो गई है। हिम कृषि योजना की सबसे बड़ी सफलता ये है कि किसानों में आत्मविश्वास बढ़ा है। जहां पहले पहाड़ी खेतों को कम उत्पादक माना जाता था, वहीं अब पॉलीहाउस में उगती खीरा, शिमला मिर्च और टमाटर जैसी आधुनिक किस्मों की व्यावसायिक खेती और सब्जियों के उत्पादन से किसानों की आय कई गुना बढ़ रही है। निश्चित तौर पर हिम कृषि योजना ने गाँव में महिलाओं की भूमिका को भी मजबूत किया है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो रही है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं प्रभा शर्मा।
उत्तर और दक्षिण भारत के बीच परंपराओं की साझेदारी और आपसी संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगम नई पीढ़ी को देश की महान विरासत और सांस्कृतिक समरसता से भी मजबूती से जोड़ रहा है। इसी कड़ी में तमिलनाडु से आए छात्रों के दल ने अयोध्या में उत्तर भारत की भक्ति परंपरा का अनुभव किया।
काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के अंतर्गत तमिलनाडु से आया छात्र समूह आज पवित्र नगरी अयोध्या में सांस्कृतिक आदान प्रदान और आध्यात्मिक एकता के नए अध्याय का साक्षी बना। आज सुबह विशेष बस के जरिए छात्रों का दल श्रीराम मंदिर धाम पहुंचा। पूरे परिसर में जय श्रीराम के नारों का उद्घोष गूंज उठा, जिसने तमिल प्रतिनिधियों के आगमन को एक उत्सव का रूप दे दिया। इसके बाद भगवान श्री राम लला के प्रथम दिव्य दर्शन ने सभी छात्रों को भाव विभोर कर दिया। तमिलनाडु के कोने कोने से आए इन विद्यार्थियों ने बड़े अनुशासन और पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन किया। यह पल उत्तर और दक्षिण भारत की भक्ति परंपराओं के अद्भुत मिलन का प्रतीक बन गया। रामलला के दर्शन के उपरांत प्रतिनिधिमंडल ने भव्य राम दरबार का अवलोकन किया, जहां भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्ट कलाकृति देखने को मिली। इसके बाद सभी छात्र श्री हनुमान गढ़ी की ओर प्रस्थान किए। हनुमान जी के पावन दरबार में छात्रों ने पूरी भक्ति भावना से प्रार्थना की और इस प्राचीन धाम की गहन आध्यात्मिक ऊर्जा को करीब से महसूस किया, जिसने उनकी यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बना दिया। इसके बाद छात्र समूह ने राम की पैड़ी का भ्रमण किया। छात्रों ने अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि यह उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायक रही। उन्हें पहली बार उत्तर भारत की आस्था, परंपरा और भक्ति की विराट संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से जानने और महसूस करने का अवसर मिला। उनका मानना है कि अयोध्या दर्शन ने उनकी स्मृतियों में जीवन भर के लिए एक अमिट और सकारात्मक छाप छोड़ दी है। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का यह विशेष कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दृढ़ता से पोषित कर रहा है। परिक्रमा के लिए राघवेंद्र त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां के हलचल। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज चेन्नई में भारत का सामना बेल्जियम से होगा। मैच रात 8 बजे से शुरू होगा।
Now in some business news, benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty closed over 0.5% higher today. The Sensex surged 447 points to close at 85,712, while the Nifty added 153 points to settle at 26,186.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
श्री अरबिंदो घोष का निधन 5 दिसंबर 1950 को हुआ था। घोष संभवतः पहले भारतीय राजनेता थे जिन्होंने अपने अखबार बंदे मातरम में देश के लिए पूर्ण स्वराज के विचार को खुलकर प्रकट किया था। बाद में वे आध्यात्मिक सुधारक बन गए और मानवीय प्रगति तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष के बारे में अपने विचार रखे।
अरबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए घोष इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज चले गए। यूरोप में वे इटली और आयरलैंड के राष्ट्रवादियों के विचारों से प्रेरित हुए। उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों के संगठन कैम्ब्रिज मजलिस में भी हिस्सा लिया।
भारत वापस आने के बाद घोष ने बड़ौदा रियासत में सिविल सेवा के अनेक कार्य किए। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रवादी राजनीति में शामिल हो गए और अनुशीलन समिति के साथ बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बन गए। उन्हें अलीपुर षड्यंत्र के लिए राजद्रोह के आरोप का सामना करना पड़ा और वे गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि उन्हें कभी दोषी नहीं ठहराया जा सका। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास ने 1909 में अलीपुर बम केस में इन शब्दों के साथ अरविंदो घोष का बचाव किया।
इस विवाद के खत्म होने के लंबे समय के बाद भी, इस उथल पुथल के बाद भी, इस विरोध के शांत होने के लंबे समय के बाद भी, उनके निधन और इस दुनिया से विदा होने के लंबे समय बाद तक उन्हें देशभक्त कवि, राष्ट्रवाद के मसीहा और मानवता प्रेमी के रूप में देखा जाएगा।
कारावास में अरबिंदो को रहस्यवाद और आध्यात्म की अनुभूति हुई। उत्तरपाड़ा में श्री अरबिंदो ने पहली बार सार्वजनिक रूप से योग और आध्यात्मिक अनुभव की बात की।
अरबिंदो बाद में पौंडिचेरी चले गए और राजनीति छोड़कर आध्यात्मिक गतिविधियों में लग गए। उन्होंने शेष जीवन समग्र योग के विकास के लिए समर्पित कर दिया।
श्री अरबिंदो ने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था, आशा थी कि राष्ट्र किसी अस्थायी उपाय के रूप में इस तरह का समाधान कभी स्वीकार नहीं करेगा। घोष को 1943 में साहित्य के लिए और 1950 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 5 दिसंबर 1950 को श्री अरबिंदो घोष का निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में 60,000 से अधिक लोग शामिल हुए। महान गुरु, दार्शनिक और राष्ट्रवादी अरबिंदो घोष को शत शत नमन।
आज लेखक और स्वाधीनता आंदोलन के सिपाही रामास्वामी कृष्णमूर्ति की पुण्यतिथि भी है। उनका निधन 5 दिसंबर 1954 को हुआ था। रामास्वामी कल्कि कृष्णमूर्ति के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। कल्कि का जन्म पुतमंगलम में हुआ था। छात्र जीवन में ही महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने 1921 में पढ़ाई छोड़ दी।
बाद में कल्कि कृष्णमूर्ति अग्रणी तमिल लेखक के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने 1941 में तमिल साप्ताहिक पत्रिका कल्कि की शुरुआत की। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास पुन्नियन सेल्वन भी लिखा, जो चोल साम्राज्य पर आधारित है। पल्लव साम्राज्य पर भी उन्होंने 2 उपन्यास लिखे। उन्होंने अनेक लघु कथाएं और उपन्यास लिखे। संपादकीय और राजनीतिक लेखों के अलावा उन्होंने सैकड़ों फिल्म और संगीत समीक्षाएं भी लिखी। 55 वर्ष की आयु में 5 दिसंबर 1954 को चेन्नई में रामास्वामी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। इस महान भारतीय देशभक्त को शत शत नमन।
Well, listeners, today we're also remembering actress Nadira. Well, she appeared on the big screen in the 1943 film Maud. At 10 or about 11 she would have been then, but she got discovered and her breakthrough film was Mehboob Khan's wife, Sardar Akhtar, discovered in film after Mehboob Khan's wife, Sardar Akhtar, discovered her and gave her a role in the 1952 film Aan. And played the role, Nadira played the role of a Rajput princess as well and created a stir in Hindi cinema. In the following years, she performed roles in a series of films before getting a call from Raj Kapoor, which changed her acting career in Hindi cinema. We have lined up a few dialogues. Let's listen into her voice now.
Tumhari baaton se bagawat ki bu aa rahi hai.
किसी की मगरूर आंखें मुझे बगावत के लिए सारी।
महाराज नहीं चाहते कि राजघराने और हाड़ों के पुराने संबंध को तोड़ा जाए।
मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि इस संबंध को इतना मजबूत कर लिया जाए कि टूटने का डर न रहे।
मैं तुमको क्षमा किए देती, शायद इस वक्त तुम अपने होश में।
So this is from the movie Aan. This was a conversation between her and Dilip Kumar. Let's listen to this dialogue now.
रख दो उधर।
मेम साहब, ये गोलमाल कितने का है?
होंगे कोई 20-1 हजार, मगर तुमसे मतलब।
20 हजार? इतना रुपया? और ये सब मैंने अपनी चालों से बनाया है मेम साहब।
तो अब तुम अपनी सबसे तेज चाल दिखाओ और यहाँ से चलते फिरते नजर आओ।
Well, this is from the movie Shri 420, the conversation between her and Raj Kapoor.
और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं आधुनिक भारतीय कला के महत्वपूर्ण चित्रकार अवनींद्रनाथ ठाकुर को। वे स्वदेशी कला आंदोलन और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध चित्रकला भारत माता आज भी भारतीय कला की सबसे प्रतिष्ठित कृतियों में गिनी जाती है और इसके साथ ही उन्होंने राजस्थानी और अजंता शैली को आधुनिक रूप देकर भारतीय कला को नई दिशा दी।
Well, today we're also remembering Ardeshir Irani, produced India's first talkie, Alamara. He ventured into cinema by exhibiting foreign films and later founded the Star Film Company in 1920. Well, he also founded the Imperial Film Company and this Alamara, he went out to make India's first talkie, Alamara, under this banner.
और इसके साथ ही श्रोताओं, आज भारत के दिग्गज निशानेबाज अंजलि भागवत का भी जन्मदिन है। अंजलि भागवत ने एयर राइफल शूटिंग में अपनी खास पहचान बनाई। वो ओलंपियन, कॉमनवेल्थ चैंपियन और एशियाई खेलों के पदक विजेता भी रह चुकी हैं और 2002 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा। उन्होंने कई स्वर्ण और रजत पदक जीतकर भारत के लिए शानदार सफलता दिलाई और उनके योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया।
Well, today it's Shikhar Dhawan's birthday as well. The cricketer stunned all observers. He scored centuries in South Africa, England, New Zealand and Australia, becoming the first Indian opener to achieve this outstanding record.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है परिक्रमा के आज के अंक को यहीं समाप्त करने का। अनुमति दीजिए करिश्मा और शगुन को। नमस्कार।